ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। बादशाहन पुराने आचार्य हुए हैं, न्याय दर्शन के कर्ता बादशाहन, भाष्यकार। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है ईश्वर की सिद्धि के विषय में, ईश्वरा कारणम पुरुष कर्म फल दर्शनात्। ईश्वर कारण है पुरुष का फल प्रदान, पुरुष के कर्मों का फल प्रदान करने के लिए निमित्त कारण है। फिर दूसरा सूत्र और आता है, न पुरुषा कर्म अभावा फल निष्पत्ते। यदि पुरुष में कर्म का अभाव मानते हैं तो फल की सिद्धि या प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर तीसरा एक और सूत्र दिया है, तत्कारित्वात् अहेतु, उसके कर्तापन में कोई हेतु नहीं है। तत्कारित्वाद अहेतु, तो तय हल चाहिए था, तय को तय कर करके है उधर से लिया, तो कारित्वाद अहेतु, तो उसके कर्तापन में कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं हो। फिर एक सूत्र इन्होंने पहले दिया है, जहाँ जीवात्मा की पुरुष की सिद्धि की बात बतलाते हैं, तो इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो यहाँ आत्मा के लिंग कहे हैं चिन्ह, जैसे अब आपका चिन्ह है ऐनक लगाई हुई है, अब कहीं आप जा रहे हैं तो झट पहचान लेंगे, कोई कह देगा एक बाबू ऐनक लगाए हुए, तो ये चिन्ह कहलाते हैं। या जैसे कोई वस्त्र आदि ऊपर से धारण किए हुए, ये चिन्ह कहलाते हैं, वरना गुण शब्द का प्रयोग कर देते, चिन्ह नहीं कहते। आत्मनो लिंग, लिंग नहीं कहते, आत्मना गुण कह देते। तो इससे सिद्ध होता है कि ये आत्मा में गुणों का भाव नहीं मानते हैं, वह इन साधनों से, इन लिंगों से, इन चिन्हों से वह आत्मा की सिद्धि होती है कि आत्मा है। और एक और भी बात है, इन्होंने इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि जो हैं, इन्होंने गुण माने हैं। जब वैशेषिकार आदि लोग छह पदार्थों का वर्णन करते हैं, तो छह पदार्थों में गुण जो है एक पदार्थ अलग ही माना है, तो वो 24 प्रकार के गुण माने हैं। फिर तो इस तरह महा ये इच्छा आदि जो हैं, तो ये गुण सिद्ध होते हैं, और वहां इन गुणों का आपस में द्रव्य के साथ में छह द्रव्य माने हैं, तो छह द्रव्यों में आत्मा को भी द्रव्य माना है और गुणों को भी द्रव्य माना है। तो अब यहां ये गुण बुद्धि को आत्मा का गुण माना है, और गुण और द्रव्य का आश्रय आश्रय भाव या संयोग संबंध रहता है। गुण हमेशा द्रव्य के आश्रय रहेगा, जहां द्रव्य रहेगा वहां गुण भी रहेंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गुण अलग ही पदार्थ है, अलग ही सत्ता है, अलग ही वस्तु है, संयोग है, और वहां जो लिंग शब्द कहा है वो इसीलिए कहा, वरना वहां गुण शब्द ही का प्रयोग कर देते। तो वहां भी इच्छा द्वेष सुख दुख आदि जो है ज्ञान के लिंग, तो वहां भी इन लोगों ने इसको भी गुण ही माना है। रूप रस गंध संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग अपरत्व आदि इच्छा द्वेष आदि ये गुण माने। तो इसलिए अब यहां विचार हम कर रहे हैं दर्शनों के विषय में, हमें भी तो अधिकार है ना उनके लिए कुछ कहने का, कि ईश्वरा कारणम पुरुष कर्म फल दर्शनात्, ईश्वर को हम निमित्त कारण कहते हैं क्योंकि पुरुष के कर्म का फल प्रदान करता है। अब पुरुष के कर्म का फल तो पुरुष भी ले सकता है। अब जैसे हमने कोई कारखाना खोलना है, एक मस्तिष्क में विचार आया है हमने कोई फैक्ट्री खोलनी है, अब तत्संबंधी विचार ही मेरे मस्तिष्क में रोज उपजते रहेंगे और उसके विषय में सोचते रहेंगे, उसके लिए कार्य क्षेत्र की तैयारी करना शुरू कर देंगे, सोचेंगे भाई किस देश में ये फैक्ट्री लगाई जाए, अगर कहीं वन में जाके लगा दें वहाँ माल उत्पन्न हो गए तो वहाँ उसको ले जाना शहरों में बिक्री के लिए बड़ा मुश्किल होगा, ढोना वगैरह, तो कहीं ऐसा स्थान होना चाहिए देश जहाँ माल का उत्पादन हो करके और जल्दी मार्केट में जा भी सके, पैसे जल्दी मिल जाए, तो उसके लिए देश ढूंढेगा वो आदमी, ऐसे देश में जाकर फैक्ट्री लगानी चाहिए जहाँ माल उत्पन्न होकर के जल्दी मार्केट में चला जाए और मार्केट के साथ में हमारा संबंध बना रहे, तो देश भी हो गया। फिर उसके लिए फैक्ट्री खोलने के लिए समय भी चाहिए, एक दिन में तो जाकर मशीन फिट नहीं कर देंगे, मकान भी बना लेंगे, तो समय की भी आवश्यकता है उसके लिए, साल 6 महीने 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं, तो काल की भी आवश्यकता है और निमित्तों की भी आवश्यकता है। निमित्त होते हैं चेतन, जड़ भी कहीं कहीं निमित्त हो जाता है, परंतु यहाँ निमित्त से हमारा अभिप्राय चेतन का ही हम लेंगे। बहुत से स्थानों में जड़ भी निमित्त हो जाया करते हैं, जैसे एक कुम्हार बर्तन बना रहा है मिट्टी का, तो वहाँ चाक भी है, दंड भी है, मिट्टी भी है, तो मिट्टी वहाँ उपादान कारण है और दंड और चाक जो है वो सहकारी कारण है, वो निमित्त कारण है। पुरुष भी वहां निमित्त कारण है और दंड भी वहां निमित्त कारण है, तो यहाँ दोनों पुरुष ही बैठा हो, डंडा ना हो चाक चलाने के लिए, घुमाने के लिए, तो नहीं चलेगा, तो वहां जड़ भी निमित्त कारण हो जाता है ऐसे स्थानों में। तो यहाँ निमित्त ऐसे पुरुष होने चाहिए जिनसे हमारा परिचय हो जाए और वो हमारे व्यापार को समझें, हमारे माल के खरीदार बन जाएं, हम उनके साथ में धन का आदान प्रदान आदि हो या नौकर चाकर आदि, वो भी सहयोगी बन जाएंगे, निमित्त बन जाएंगे, ये मनुष्य ही होंगे। तो देश हो गया, काल हो गया, निमित्त हो गए, मनुष्य सहकारी सहयोगी बन गए। अब चौथा सामग्री की जरूरत है। अब कारखाने के लिए तो बड़ी सामग्री की जरूरत है, विदेशियों से संबंध बनाएंगे, वहाँ से मशीनें आनी हैं, पहले मकान तैयार करेंगे, सारे साधन उसके बनाएंगे, तो इस प्रकार के वो बनाएंगे। और फिर दूसरी सामग्री की, हमारा माल, हम कारखाने का माल अपनी एक दुकान, 2-4 दुकान मार्केट में खोलेंगे ताकि माल हमारे कारखाने का आन करके दुकानों पर बिक्री का हेतु बन जाए। कारखाने से तो लोग खरीदने में जरा मुश्किल होगी, माल हमारा मार्केट में दुकान में आएगा, लोगों के साथ कंपटीशन होगा, माल बिकेगा और हमको रुपया मिल जाएगा। तो अब बतलाओ, इसमें भगवान की तो जरूरत नहीं रही, हमने फैक्ट्री खोल के धनोपार्जन आदि किया, सब कुछ किया, हमारे अंदर संस्कार थे, यहाँ तो परमात्मा के फल प्रदान करने की जरूरत है। जब इस प्रकार के कर्मों का फल हम स्वयं ही देश काल निमित्त सामग्री तैयार कर करके फल प्राप्त कर लेते हैं, तो और भी तो कर्मों का हम फल प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए भी भगवान की जरूरत नहीं कर्म फल प्रदान करने के लिए। तो यहाँ जो इसने सूत्र दिया है तो हमारी बुद्धि से तो बाहर की बात है, ईश्वरः कारणम पुरुष कर्म फल दर्शना, वह ईश्वर कारण है, हम पुरुषों को कर्मों का फल देते हुए देखते हैं। तो हम अब वो तो ये देखता होगा और हम देखते हैं कि वह पुरुष कर्म फल दर्शनात् पुरुष अपने आप ही देश काल निमित्त सामग्री और पुरुषार्थ पांच चीजें जुटा करके अपने कर्मों का फल स्वयं ही उपलब्ध कर सकता है। इसके लिए परमात्मा के विभाग करने की जरूरत नहीं। व्यक्तिगत परमात्मा से बहुत से कर्म कराने की इच्छा रखते हैं कि भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, भगवान हमें शांति देगा, भगवान हमें सुख प्रदान करेगा। व्यक्तिगत कुछ परमात्मा के कर्म ऐसे देखने में नहीं आते, सामूहिक रूप से तो देखने में आते हैं। कैसे? अब जैसे परमात्मा को आप सब लोग व्यापक मानते हैं, अब परमात्मा का व्यापक रूप से कर्म जैसे पृथ्वी के गर्भ में है, अब वहां अगर उसका कर्तृत्व धर्म मान लेने तो भूकंप पृथ्वी में आता है, तो भूकंप में पृथ्वी का कुछ भाग उलट उलट करके तहस नहस हो जाता है, वहां उसमें धर्मात्मा भी मर जाते हैं, पापात्मा भी मर जाते हैं, पुण्यात्मा भी मर जाते हैं, बाल भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, तो कहां भगवान के घर में इंसाफ हुआ। दूसरी बात, अब यहां बारिश हम तो कर नहीं सकते, बादल बादल बरसा नहीं सकते, फिर कहते हैं कि भगवान वर्षा करता है, तो भगवान खूब बारिश करता है। यहाँ पीछे चार दिन हुए, मटन में चार चार फुट पानी भरा हुआ था, वहाँ लोगों की दुकान और मकान भी, यहाँ के लोग खुश हो रहे थे, गर्मी थी, शहर के लोग भी खुश हो रहे थे कि बारिश हो रही है, ठंडी हो जाएगी। तो एक तरफ तो भगवान ने तबाही कर दी और एक तरफ वहाँ भगवान ने रक्षा कर दी। तो जहाँ तबाही करी वह धर्मात्मा भी थे, भले भी पुण्यात्मा भी थे, उन्होंने क्या अपराध करा। तो ऐसी ऐसी बातें परमात्मा के विषय में विचारणीय है कि आया कि ये ऐसे कर्म परमात्मा ही करता है या कुछ हमारे भोग ही इस प्रकार के कर्म करा देते सामूहिक। जैसे एक गांव है, एक गांव में सारे डाकू चोर रहते हैं, तो वहां वो सब डाके का ही काम करेंगे, और एक जगह भले आदमी रहते हैं तो वहाँ भले पास ही, तो वहाँ तो भगवान तो कहता डाकुओं को, क्योंकि सामूहिक काम हो रहा ना, तुम सारे डाका ही मारा करो, यही कर्म किया करो, और वहाँ पुण्यात्माओं को कहता है कि तुम पुण्य कर्म ही किया करो। एक चोर जब चोरी करने चलता है वो भी कहा करता है कि अगर भगवान मेरी चोरी लग गई तो तेरे नाम का इतना प्रसाद बांटूंगा। हमारे पास ऐसे चोर आया करते थे नहर पे, हमारी भी सुखना सुख कर जाया करते थे कि बाबा जी अगर हमारी चोरी आज लग गई तो तुम्हारे गुरु के नाम का प्रसाद बांटेंगे, हमें भी प्रसाद लाया करते थे और भगवान को भी देते थे वो। तो अब वो भगवान, खैर हम तो साधु महात्मा एक देश में रहने वाले, लोभी हुए, कामी हुए, लोभ मान के भगत को कह दिया अच्छा जा भाई भगवान पे रख, पर भगवान क्यों ऐसा करता है? वो चोरों को कहता तू चोरी कर, साधुओं को कहता तू साधु रहो, इस प्रकार की प्रेरणाएं क्यों भगवान करता है? सुनित, आप लोगों ने जो भगवान के विषय में बहुत सी मान्यताएं बना ली हुई हैं, यह एक बड़ी विचार गलत विचारधारा चल रही है परंपरागत। ये एक व्यक्ति में चलती है, फिर परिवार में चलती है। एक गलती, एका कर्माणि कुरुते भूते सर्वे महाजना, एक घर में पाप कर्म या पुण्य कर्म करता है सब परिवार वाले उसका फल भोगते हैं। तो ऐसे ही जैसे एक राजा से कोई विशेष अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो प्रजा को भी उसका दुख भोगना पड़ता है। एक परिवार में कोई अच्छा या बुरा कर्म हो जाता है, चोरी डाका हो जाए, किसी से कत्ल हो गया, तो सारे परिवार के लोग दुखी रहते, उनको भी फल भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है, तुम परमात्मा के लिए क्यों ऐसी व्यवस्था अपने आप ही उसके ऊपर थोपते हो? कभी वो तुम्हें कहता है मैं तुम्हारे कर्म फलों का निस्तारा कर रहा हूँ, विभाग कर रहा हूँ, कभी तुम्हें कोई प्राइवेट आन के तुमसे बातचीत करता है भगवान, जैसे हम और आप करते हैं, कभी देखा करते हैं। तो उसके विषय में अनेक प्रकार की मनौतियां आप लोगों ने बना ली है। मैं परमात्मा से इनकार नहीं करता उसकी सत्ता से, उसको मानता हूँ, तुम्हारे से ज्यादा मानता हूँ, पर मैं उसका मानना ये देखता हूँ उसके जो प्रधान प्रधान कार्य हैं वो उसी के द्वारा होते हैं, वो हमसे नहीं, जैसे पृथ्वी चल रही है ये प्रधान कार्य है, हम सारे पहलगाम के मिलकर भी पृथ्वी को नहीं चला सकेंगे। सूर्य सवेरे से उधर उदय हुआ था और शाम को इधर अस्त हो गया, अब चंद्रमा निकलेगा इधर होगा उधर, ये बड़े बड़े काम तो हम मान लेंगे भाई हम नहीं कर सकते, पर तुम तो अपने घरेलू काम भी भगवान से कराते हो, जैसे तुम्हारा नौकर ही बैठा हो भगवान। अब रही उसकी भक्ति उपासना पूजा आदि की भी बात, इसके विषय में भी हम कहेंगे, जब भगवान कुछ करता धरता ही नहीं है, कुछ देता लेता ही नहीं है, तो ये जो हम भक्ति पूजा आदि कर रहे हैं इसका क्या फल होगा? इसका फल अगर माना जाए, क्योंकि भगवान निष्क्रिय है, वो कर्म नहीं करता है, वो शांत है, वो आनंद रूप है, तो आप भी अगर उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसको हाजिर नाजिर मान करके उसके समीप जाते हैं, तो जो उसके अंदर गुण देखते हो, हम तो गुण नहीं मानते, परंतु जो उसका स्वरूप देखते हो वो तुम्हारे अंदर भी तो उसका प्रभाव हो जाता है। भगवान आनंद रूप है, तुम पास उसके साथ मिलकर तुम भी आनंद रूप बन जाओगे, ये तो बात कुछ हो जाएगी शायद, परंतु वो तुम्हारे हृदय के ही संस्कार हैं, आपने भगवान को समझ लिया कि भाई ये आनंद रूप है और हम भी आनंद रूप हो जाएंगे, ये तो बात मानने की बल सकती है। पर चोर भी डाकू भी सब प्रकार के लोग उसकी उपासना करते हैं, चोरों को चोरी करने के लिए कहता है, साधुओं को साध बनने के लिए कहता है, ये बातें परमात्मा की नहीं। और हमारी भक्ति पूजा आदि का फल ये होता है कि हम विषय विकारों से, अब जैसे वो लड़की बैठी है आज तीसरा दिन है उसको, सब प्रकार के विषय विकारों से निवृत्त होकर शांत होकर के बैठी है, ठीक है, उसका संबंध परमात्मा से बना हुआ है, शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है, सब इंद्रियों के व्यवहार बंद हैं। हम भी एक दो घंटा जब उपासना में पूजा में ध्यान में बैठते हैं, हमारी भी इंद्रियों के व्यवहार और व्यवहार बंद हो जाते हैं, और जो हमारे अनुकूल कर्म है, क्योंकि अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम, अनुकूल जो कर्म होते वो सुख का हेतु शांति का हेतु बन जाते हैं। हमने अनुकूल कर्म क्या बना लिए अपने विचारधारा से, भाई थोड़ी देर बैठ करके मंत्र का जाप कर लेना, भगवान की पूजा करना, ध्यान कर लेना, इस प्रकार इनमें हम सुख मानते हैं। अब इसी प्रकार के कर्म हमारे सामने आते रहेंगे, भक्ति के पूजा के ज्ञान के ध्यान के, इनमें कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ेगी, ये अनुकूल कर्म हमारे लिए सुख का हेतु बहुत देर तक बने रहेंगे जब तक हम इनको करते रहेंगे, तो ये सुख का हेतु अनुकूल कर्म बने हैं, इनको मान लिया है। और अंत में देखा जाता है जा करके, क्योंकि ये भी परिणाम होने वाले हैं, तब्दील होने वाले हैं कर्म, पहले ब्रह्मचारिता रोज हवन एक विचारधारा से बन गई थी, ब्रह्मचारी को यज्ञ कर करके रोटी खानी चाहिए, ब्रह्मचारी को संध्या कर करके परमात्मा की पूजा करके रोटी, तब उसको धर्म कर्म माने बैठा था, अब सन्यासी बना, उस वक्त एक धर्म बताया गया था माता पिता ने कि ये धागा जनेऊ पहन करके ये भी ब्रह्मचारी के लिए एक नियम होता, एक चोटी यहाँ रख करके ये भी, ये सब धर्म बताए थे माता पिता ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने, अब फिर उन्हीं धर्मों का निषेध कर दिया, अगर वो धर्म थे पुण्य कर्म थे तो सदा साथ ही रहने चाहिए, तो उनको क्यों छुटाया गया, उन पुण्य कर्मों को उन धर्मों को क्यों छुटाया गया, और दूसरे धर्मों का विधान क्यों कर दिया कि भाई अब यज्ञ की भी जरूरत नहीं, शिखा सूत्र की भी जरूरत नहीं, किसी और कर्म की भी जरूरत नहीं, किसी और कर्म, सारे छुटाते छुटाते चले गए, पहले तो कीचड़ में पैर डलवाए और फिर कहो जाओ बेटा धोते फिर वो। चलो, परमात्मा को कर्ता माने बैठे हैं वो बात इन युक्तियों से प्रमाणों से उदाहरणों से सिद्ध नहीं हो रही है। अब रही इस शरीराभिमानी आत्मा की बात आती है कि इसको तो कर्ता भोक्ता मान लो, ये तो हम देखते हैं, इसको भी कर्ता भोक्ता तो मान लो, परमात्मा का तो खैर कर्म देखने में नहीं आता, वो तो अंदर से बैठा सूर्य को चला रहा होगा, चंद्रमा को, पर ये हम तो इसमें बैठे हैं ना, हमें तो सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, तो हम तो कर्ता भोक्ता हैं। अगर आत्मा को ही हम कर्ता भोक्ता मान लेते हैं तो इस आत्मा का तो कभी मोक्ष नहीं होगा, क्यों कि अनादि काल से इतने कर्मों का सिलसिला इस आत्मा के साथ। अगर एक ही जन्म होता, जैसे क्रिश्चियन भाई मानते हैं एक या पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं, उसमें भी आपत्ति होती है पुनर्जन्म न मानने में, और पुनर्जन्म मानने में भी आपत्ति होती है। पुनर्जन्म मानने में तो ये आपत्ति होती है कि अनादि काल का सिलसिला कर्मों का प्रकृति से आत्मा के साथ जुड़ा रहा है, और एक कानी उससे पहली प्रकृति का, पहली सृष्टि का कोई अंत नहीं है, तो इतने कर्मों का सिलसिला आत्मा के साथ चला आ रहा है, और वो कर्म ही आत्मा को कर्म करने, या संस्कार कहो उनको, वो संस्कार ही आत्मा को कर्म करने में बाध्य करते हैं, तो इनकी इनका तो खात्मा कभी होगा नहीं, तो आत्मा का मोक्ष नहीं होगा कभी भी। अब रही ये तो पुनर्जन्म, चाहे जन्म धारण करते चले जाओ और कर्म कुछ ना करो, पिछला इतना भंडार तुम्हारा भरा हुआ है कि भोग भोग कर कभी समाप्त नहीं होगा। अगर पुनर्जन्म की बात नहीं मानते तो इसमें भी एक आपत्ति है। मैं, मेरी युवावस्था है, मैंने बड़ा सुंदर एक महल तैयार करा धन कमा करके, और आज ही लाया हूं पत्नी को विवाह करके, और कल मोटर में बैठ करके जा रहा था मैं अपना क्या नाम शादी शगन वगन मनाने, हनी मोहन मनाने, ऊपर से एक पत्थर आया पहाड़ का और मुझे चकना चूर कर करके चला गया। अब बतलाओ मैंने क्या अपराध किया था, वो पत्थर आया और मेरे इतने मेरा घर भवन वगैरह पत्नी आदि सब कुछ संपत्ति मेरी ऐसे पड़ी रही, उसका भोग मैं क्यों नहीं कर पाया। जो पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले हैं वो इस प्रकार के जो उसके कर्म अवशेष, बड़ी धन संपत्ति, पत्नी लाया सब कुछ किया, वो पत्नी का भी भोग नहीं कर पाया, धन का भी भोग नहीं कर पाया, महल का भी भोग नहीं, उसने क्या अपराध किया था। अगर पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं है तो उनका फल कैसे मिलेगा, तो फिर यही परिसमाप्ति होती है। और एक और बात यह है, स्वर्ग के भी हम बड़े सबज बाग दिखाते हैं। अब स्वर्ग का निर्माण हमने करना है, अगले आचार्य निर्माण कर करके स्वर्ग में चले गए, क्राइस्ट भी गया, कृष्ण भी गया, गौतम भी गया, बुद्ध सब गए, किसी ने आन के बताया नहीं, कोई लेने भी नहीं हमें आया, फिर छोड़ तो गए पहले। बड़े बड़े सबज बाग दिखाते रहे तुम्हें ले जाएंगे स्वर्ग में, आप चलते बने हमें नहीं लेंगे, हम अभी तक इंतजार में बैठे कब आएंगे लेने के लिए। फिर उनका भी पता नहीं वहां उनकी क्या स्थिति बनी हुई होगी, कहीं परमात्मा ने रस्सी बांध करके पैरों में उल्टे तो नहीं लटकाया हुआ हो आकाश के अंदर। क्या साबूत है किस अवस्था में वो होंगे, वो जो मुक्त आत्माएं हैं कहाँ ठहरते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या सुख भोगते होंगे, क्या करते होंगे। कोई संदेश तुमको कभी आता है कृष्ण का, क्राइस्ट का, मोहम्मद का, किसी और का, बुद्धा का, या किसी कोई संदेश आता है कभी तुम्हारे पास प्राइवेट, अगर भाई मैं यहाँ बैठा हूँ कोई लेटर वेटर भेज दिया करे, कोई तारी भेज दिया करे, कुछ भी नहीं आता। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं सी चली हुई है सभी संशय आत्मक है। तो तरक्की कसौटी पर भी तो उनको उतारना चाहिए, तो जब तरक्की कसौटी पर उतारते हैं तो ये इस प्रकार की मान्यताएं सब धूमिल सी हो जाती है, गलत साबित होती है। मुझे जो समझ में आ रहा आत्मा परमात्मा, मैं तुम्हारे आत्मा को नहीं छेड़ता, मैं तो अपने आत्मा की बात करता हूं, मैं तुम्हारे परमात्मा को भी नहीं छेड़ता, जो जितना हिस्से में मेरे आया ना भगवान मैं तो उस भगवान की बात करता हूं, कम से कम मेरे शरीर के अंदर जितना भगवान है मैं तो अपने उस भगवान की बात करता हूँ, आप अपने की कर लेना। तो ये मेरा भगवान जो है, ये मेरा जो आत्मा है, इसके विषय में जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, तरक की कसौटी पर उतार रहा हूँ, मुझे तो ऐसा समझ में आता है। अगर आप ज्यादा समझे बैठे हो मेरे से तो मेरी अज्ञानता को, भूल को दूर कर सकते हो, वरना मेरी बात को मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। होती है कि हम तो हर वक्त व्यवहार करते हैं, मैं रोटी खाता हूँ, मैं घर पर जाता हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, हर वक्त अपने लिए व्यवहार तो करते हैं। तो क्या जब ये हम अपने अंदर व्यवहार करते हैं तो कर्म की उत्पत्ति तो आत्मा के अंदर ही होनी चाहिए। कर्म की उत्पत्ति आत्मा के अंदर अगर हम मानते हैं तो इसका तो मोक्ष होना नहीं, क्योंकि अनादि काल से कर्म चले आ रहे हैं। अगर इन कर्मों की उत्पत्ति आप चित्त में मान लेते हैं, क्योंकि वृत्तियां चित्त में उत्पन्न होती हैं, तो वृत्ति भी तो कर्म आत्मा की एक व्यवहार ही तो है ना। तो उस कर्म की उत्पत्ति आप चित्त में क्यों नहीं मानते? चित्त में ही ज्ञान और अज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते? चित्त की ही वृत्तियां क्यों नहीं मानते? चित्त के ही कर्म और व्यापार क्यों नहीं मानते? अगर यही भूल और भ्रांति हुई हुई है कि वृत्तियां चित्त की हैं, कर्म चित्त में हो रहे हैं, ज्ञान अज्ञान चित्त में हो रहे हैं और आरोप अपने पर कर रहे हैं। जैसे एक राजा बैठा है यहाँ, उसकी सेना जा करके रशिया में लड़ रही है, अमेरिका में लड़ रही है, युद्ध कर रही है, तो हार और जीत का मालिक राजा यहाँ अपने आप को अनुभव करता है। लड़बड़ तो रही है सेना, विजय सेना करेगी, मरे सेना मरेगी भी, सेना विजय भी करेगी, और राजा यहाँ हार जीत की बात कर रहा है, तो राजा की भी तो वो भ्रांति ही है। जैसे राजा भूल करके सुख और दुख का अनुभव कर रहा है, लड़ना मरना सेना कर रही है, सब कुछ हार जीत सेना की हो रही है, ऐसे ही ये सारे कर्म और व्यापार चित्त के अंदर हो रहे हैं, भ्रांति से, गलती से, अज्ञानता से तुम अपने ऊपर उनको थोप रहे हो, मंड रहे हो, आरोप कर रहे हो। इस अज्ञान को दूर करना है। आत्मा तो है ही मुक्त है, जब ये कर्म करता ही नहीं भोगता नहीं है तो मुक्ति ही है। भ्रांति से तुम अपने आप को कर्ता भोगता माने बैठे हो। ये तो धर्म चित्त के हैं, चित्त की वृत्ति है, उसका निरोध करना, आत्मा की स्वरूप में स्थिति करनी है। तो इस बात से भी सिद्ध होता है, ये क्या नाम, योग की परिभाषा से, योग दर्शन से भी, कि आत्मा अकर्ता ही है। जब चित्त की वृत्तियां तो आप निरोध करते हो, वृत्तियां चित्त में होती हैं, आत्मा की स्वरूप में स्थिति मानते हो, तो बंद और मोक्ष तो चित्त का ही होगा, ज्ञान और अज्ञान तो चित्त के ही होंगे, आत्मा में तो कुछ भी नहीं हुआ। सावधान, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो बैठ के आराम से।